ओम शांति। ये जीवन की नैया है प्रभु के हवाले। याद आता है ब्रह्मा बाबा का वो अद्भुत व्यक्तित्व, वो अद्भुत ब्रह्मा बाबा के द्वारा मिली हुई शिक्षाएं और जीवन के अंदर इतना ज्ञान का रस भर कर के जीवन को एक बहुत ही दिव्य अलौकिक बनाया है। श्री बाबा को याद तो निरंतर करते ही है, लेकिन भक्ति में गाते थे कि गुरु गोविंद दोनों खड़े। यहाँ कोई पाए की तो बात नहीं है, लेकिन याद तो जरूर आता है कि जो कुछ हमको जीवन के अंदर प्राप्तियाँ हुई है तो नेचुरल है। श्री बाबा तो निराकार है, ज्योतिर्बिंदु है। कई बार कहा है कि मुझे ब्रह्मा का रथ लोन पर लेना पड़ा। मैं तो बिंदु स्वरूप हूँ, ज्योति स्वरूप हूँ। ब्रह्मा के द्वारा ही मैं सृष्टि के नव निर्माण का कार्य करने हेतु इस भारत भूमि पर अवतरित हो चुका हूँ। और भगवान तो अवतरित हो चुका संत कराची में ब्रह्मा बाबा के तन में जब इनकी 60 साल की आयु थी। और उस समय पर हम लोगों का तो जन्म जीवन भी नहीं था, लेकिन जिस दिन इस संसार में जन्म हुआ तो उसके बाद फिर वो ऐसा ही संकेत मिलने लगा कि जीवन तो उनको ही कहेंगे कि जिसके जीवन के अंदर प्रभु मिला। तो क्यों नहीं, जब कई भक्तों को मिला, कई संतों को मिला, कई महान विभूतियों को मिला, तो वो प्रभु हम लोगों को क्यों नहीं मिल सकता है। और भक्ति मार्ग में बहुत सारी हमारी स्टडी चलती रहती थी, तो उसमें एक हमने दृष्टांत पढ़ा था कि एक भगत था, झाड़ के नीचे तपस्या कर रहा था। वहाँ से नारद मुनि जा रहे थे, तो नारद मुनि ने उनको पूछा कि क्या कर रहे हो आप? तो बोले, मैं भगवान की प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहा हूँ। तो आपको पता है नारद मुनि के तो स्वभाव संस्कार में रौनक और झलक थी। तो कहा कि भगवान तो तेरे को मिलेगा, लेकिन मैं बताता हूँ कि तू जिस झाड़ के नीचे बैठा है वो झाड़ में जितने पत्ते हैं उतने तेरे जन्म हो जाएंगे, बाद में तेरे को भगवान मिलेगा। तो उनको खुशी हुई कि उसके बाद भी भगवान मिलेगा तो सही ना। तो उतना भी उनको आनंद आया कि उसके बाद भी प्रभु की प्राप्ति तो होगी ना, तो फिर तपस्या के लिए बैठ गए। लेकिन हमें धीरे 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 बाबा ने अंदर अंतरात्मा से जागृत किया कि सही तपस्या क्या है, त्याग क्या है, भाग्य क्या है, आप कौन हो, कहाँ से आए। कितनी ज्ञान की बातें बाबा ने सुनाई। और बाबा देखो, श्री बाबा ब्रह्मा में प्रवेश किया और बच्चों को जो महामंत्र दिया, पहला ही महामंत्र श्री बाबा का ब्रह्मा के मुख द्वारा। आप सभी को मालूम होगा कि पहला ही महामंत्र कौन सा मिला, पवित्र बनो, योगी बनो। बल इस दुनिया के अंदर हजारों नहीं लाखों सत्संग है, कई प्रकार के गुरु गुसाई ये वो सब कुछ बहुत है, लेकिन पहले ही प्यूरिटी का फाउंडेशन कोई भी मनुष्य आत्माओं में डालना, ये काम कोई साधारण व्यक्ति का नहीं था। लेकिन ये ब्रह्मा बाप के द्वारा श्री बाबा ने जो शब्द सुनाए तो इतना जैसे जिगर के अंदर, दिल के अंदर एक करंट के समान छप गया कि पवित्र बनो, योगी बनो, माना ही परमात्मा की प्राप्ति का ये सबसे बड़ा चिन्ह है कि जब तक आत्मा शुद्ध नहीं बनेगी, स्वच्छ नहीं बनेगी, पवित्र नहीं बनेगी, तब तक परमात्मा की प्राप्ति का एहसास या अनुभव कोई भी आत्मा कर नहीं पाती है। बहुत सारे धर्म नेताएं, धर्म के लोग आमने सामने मिलते हैं, बड़ा दिन होता है तो कहेंगे मनसा वाचा कर्मणा, जो कुछ पाप कर्म किया है भगवान हम माफी मांगते हैं। परंतु लोगों को यही पता नहीं है कि पाप कर्म बनता कैसे है, किस तरह से उनको नाश होता है, ख़त्म कर सकते हैं, वो तो कुछ मालूम नहीं था। तो हम भी बचपन में जैसे ही जन्म लिया तो 12 मास से ही हमको अंदर में, जैसे आत्मा के अंदर में 12 महीने की थी लौकिक जन्म, तब से लेकर के ये होता था कि कुछ तो दुनिया में है, कुछ लेना चाहिए मिले, परंतु कहाँ से मिले, कैसे मिले। हमने पहले भी बताया है यहाँ कि आसामी घर में जन्म लेने के कारण कुछ बोल नहीं सकते थे, सुख संपत्ति थी, सब कुछ था, कोई बात की कमी नहीं थी, तो मांगे तो क्या और बोले तो भी किससे बोले, कि कब तो भी कहेंगे आपको क्या जरूरत है इस उम्र में, आप जब हमारे जैसे बड़े बूढ़े बनो तभी भगवान का नाम लेना ना, अभी क्या, अभी तो खाओ पियो मौज करो, जिंदगी में खुशियाँ मनाओ, क्या करना है। लेकिन इस बात के लिए मन कोई बात में जैसे मान्यता मन की नहीं होती थी, ऐसा ही होता था कि नहीं मैं कुछ तो जिंदगी में चाहिए। तो इस स्थिति से कुछ समय बीता, फिर स्कूल में पढ़ाई लिखाई हुई, आगे बढ़े और फिर वो कई प्रकार की पुस्तकें भी, इंटरेस्ट था ना धार्मिक के प्रति, तो फिर पुस्तकें भी पढ़ने लगी, लेकिन मेरे मन का जवाब मुझे किधर नहीं मिल रहा था। जैसे ब्रह्मा बाबा को दिखाते हैं कि उसने 12 गुरु किया और दत्तात्रेय ने दिखाते हैं कि वो 24 गुरु किया, तो ब्रह्मा बाबा ने जो 12 गुरु किए थे उसमें से एक गुरु थे ब्रह्मा बाबा के, उनकी शिष्या लौकिक में हमारी गुरु थी और उनके द्वारा मैं कुछ शिक्षाएं लेती थी। लेकिन ये पवित्र बनो, योगी बनो, ये सभी योगी माना, योगी तो ऐसा ही लगता था कि योगी वही बन सकता है जो जंगल में जाता है, तपस्या करता है, कुटिया में रहता है, साधु बन जाता है। अब ये तो कुछ पॉसिबल जिंदगी में होता नहीं है सभी के, तो ऐसा ही सोच रहे थे कि क्या करना चाहिए। तो इसलिए ब्रह्मा बाबा को कहने का भाव कि जब पहली बार हमने मुंबई में देखा तो ब्रह्मा बाबा की एक अद्भुत हस्ती को देख करके मन ऑटोमेटिक प्रसन्नता आ गई, माना कोई देख करके नहीं, लेकिन उसकी अलौकिकता, उनकी प्यूरिटी, उनकी अंदर में बहुत बड़ी विशाल भावना, तो जैसे उनकी प्रकृति का 5 तत्वों का बना हुआ पुतला जैसे दिखाई नहीं दिया, लेकिन प्रकृति तो 5 तत्वों की बनी हुई है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। तो ब्रह्मा बाबा में हमने देखा कि आकाश जैसी विशालता, इनकी जिंदगी में जितना जितना समीप जाते गए तो देखा आकाश जैसी विशालता भी है, धरती जैसी उनमें धीरेता भी है, अग्नि जैसी माना तेज भी, तेजस्विता भी इतनी है, और जल जैसे ही शीतलता भी उतनी है। तो आकाश, वायु, अग्नि, वायु की तरह उनमें इतने 60 साल की उम्र के बाद भी उनकी चलन देखो, तो हम मधुबन तो बाद में पहुंचे, लेकिन बाबा चलते भी थे तो ऐसे जैसे धरती को जरा भी बिल्कुल ही आशी नहीं आ रही है, और इतनी उम्र में भी बाबा ऐसे चलते थे जैसे कोई भी कोई साथ हो तो पीछे हो जा सकता, लेकिन ब्रह्मा बाबा बहुत आगे बढ़ जाते थे। फिर ब्रह्मा बाबा के संपर्क में, मम्मा के सानिध्यता में धीरे धीरे आते गए, फिर बहुत कुछ सीखना मिला और वो सीखना तो हमारी लाइफ के लिए एक बहुत ही श्रेष्ठ कहेंगे समय, जिसको कहेंगे बहुत भाग्यवान समय कहेंगे, कि भाग्य विधाता ने सचमुच लककर लोक की खोल दिया। और इतना जैसे कई कहते हैं ना कि हमारे मन में बहुत आनंद है, खुशी है, पर चेहरे पे कईयों की खुशी हम प्रैक्टिकल में देखते नहीं हैं, ऐसे बोलते रहते हैं, परंतु यहाँ तो हमने देखा कि सचमुच एक वो चेहरा ही मन का दर्पण हो जाता है, सामने से दिखाई दे रही है। और बाबा मिला तो नेचुरली ऐसा हुआ कि सब कुछ मिल गया। जिस प्रभु के हम प्रार्थना करते थे, तो माता हो, पिता हो, बंधु हो, सखा हो, स्वामी हो, सदगुरु हो, परंतु ये प्रैक्टिकल में सभी संबंधों की रचना और सभी संबंधों की भासना बाबा ने बच्चों को दिया, प्रैक्टिकल में दिया, तभी तो आज कोई भी बात में आश्चर्य नहीं लगता है। लेकिन उनकी शक्ति, दिव्य शक्ति का एहसास होता है कि इतना बड़ा कारोबार आज बाबा को इस धरा पर आते हुए भी, श्री बाबा को 83 इयर्स हो गए, शिव जयंती को अभी 84 आएगा, परंतु देखो उसने स्थापना का जो कार्य का निर्माण किया, नव निर्माण किया, तो उस कार्य में अभी भी जैसा चल रहा था वैसा ही वैसा, माउंट आबू की दिनचर्या देखो, पांडव भवन की, फिर शांतिवन की, ज्ञान सरोवर की, दिनचर्या में अंश मात्र भी फर्क नहीं है। आप समझ सकते हो कि ये करवाने वाला कौन है। नेचुरली लगेगा कि ये कोई दिव्य, कोई व्यक्ति की शक्ति नहीं है, लेकिन ये दिव्यता, दिव्य ज्योतिर्मय शिव बाबा की शक्ति दिखाई दे रही है। आज भी जो इतना बड़ा, आज आप दुनिया में जाके देखते हैं तो व्यक्ति को एक घर को चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और कभी कभी अगर समझो 8-10 कोई मेहमान कहीं से आ गए छुट्टियों में, तो सारी दिनचर्या हेरा फेरी हो जाती है, बदल जाती है, ऊंची नीची हो जाती है। और बाबा के घर में देखो, तीनों ही भवन में आए दिन बच्चे आते रहते हैं, जाते रहते हैं, एक ग्रुप गया, दूसरा आया, दूसरा गया, तीसरा आया, लेकिन फिर भी दिनचर्या हूबहू वही के वही चलती है कि नहीं चलती है, कोई फर्क नहीं है। सवेरे वही, बाबा के टाइम पर भी हमने देखा, यहाँ आते थे मधुबन में 3:30 बजे उठना, माना उठना, फ्रेश होकर के 4 बजे से योग लगाना, मना लगाना 4:45 बजे तक, बाद में फ्रेश होकर के वापस मुरली के क्लास, वापस नाश्ता भी टाइम पर, हर दिनचर्या एकदम टाइम टू टाइम। तो बाबा के से हमने बहुत कुछ सीखा, ये बातें अपने जीवन में अंदर धारण किया कि बाबा देखो हर चीज़ टाइम टू टाइम। और कभी भी बाबा किसी भी व्यक्ति से, यहाँ तो हमने देखा है दुनिया में तो कईयों के घर में कोई आएंगे मेहमान, या तो उनके बच्चे कोई तूफान करेंगे, या तो कुछ पति भी कुछ बोल देगा तो चेहरा काला पीला हो जाएगा, और कभी कभी गुस्सा भी आ जाएगा, जोश भी आ जाएगा, लेकिन बाबा को हमने देखा जब भी देखो तभी मुस्कुराता वो फूल। बाबा की मुस्कुराहट ही जैसे जिंदगी को एकदम नया जीवन दे देती थी। तो बाबा ने इतना बच्चों में जैसे ऐसा ही कहे कि नया एक जीव दान दिया, प्राण दिया जाए नया, तो उससे एक जिंदगी के अंदर नई रौनक आई, नई खुशी आई। यूं तो बाबा की शिक्षाओं से अपरम अपार मिली है। साकार बाबा के सन्मुख जाते थे, मिलते थे, चैम्बर में भी बाबा के साथ बैठते थे, बातचीत करते थे, तो अपने को इतना पद्मा पदम भाग्यवान समझते थे कि अरे भगवान के समीप हमको बैठना मिला। और ब्रह्मा बाबा जब भी भोजन भी खाते थे तो एक बार बाबा ने कहा कि बच्ची आज आप भी मेरे साथ ही खाना खाओ। तो बाबा ने अपने साथ खाना खिलाने बैठे तो हमारे कोई खाने के टाइम वहाँ नज़र नहीं, लेकिन बाबा का वो स्वरूप में जो लाइट माइट दिखाई दे रही थी ना, वही जैसे आत्मा देख रही है। तो बाबा ने भी समझ तो लिया कि ये 5000 साल वाले जो बच्चे हैं उनको सिर्फ बाबा ही बाबा दिखाई देता है, और 5000 साल का ये इतिहास है, आजकल का नहीं है। और उसमें भी बाबा ने सारी हिस्ट्री हम बच्चों को बता दी है, आदि मध्य अंत का ज्ञान दे दिया है। तो बाबा के साथ जैसे भोजन करने बैठे तो बाबा की दृष्टि पड़ी, तो बाबा ने जैसे दृष्टि दिया तो हमने भी सामने देखा, तो बाबा ने घिट्टी लिया थाली से उठा करके मुंह में डाला, तो मैं तो बाबा को ही देख रही हूँ। तभी बाबा सामने से कह रहे हैं कि बच्ची भूल गई, ये तेरा ही तो वादा था कि हे प्रभु हे भगवान जब आप आओगे तब मैं वारी जाऊंगी, बलिहार जाऊंगी, कुर्बान जाऊंगी। याद है बच्ची, तूने ही भक्ति मार्ग में वायदा किया था तुम ही से खाऊं। आज बाप आपका ये वादा पूरा करने के लिए आया है। आप समझ सकते हो कि तभी कोई भी व्यक्ति इस समय पर सामने होगी कि रोमांच खड़े हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, वो गदगद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो उस समय पर हमारी भी अवस्था एकदम ही ऐसी तटस्थ हो गई, देखते हैं देखते हैं और आंखों में से आंसू जा रहे हैं। अरे प्रभु, प्रभु मिला, क्योंकि भक्ति में तो सुना था कि तुलसीदास संत, कबीर, ध्रुव, प्रहलाद सभी को मिला। सूरदास का भी एक इतिहास पढ़ा था कि सूरदास को भी वो कृष्ण की भक्ति करता था, तो एक बार कृष्ण आकर के, वो तो ब्लाइंड भी थे सूरदास, तो उनके गोद में आकर के कृष्ण बैठ गया और उनकी बांसुरी की टेर सुनाने लगा। तो सूरदास तो ब्लाइंड थे, देख नहीं पा रहे थे, लेकिन उनको भाकी पहनने के लिए जाते, ऐसे कहानी दिखाई थी, वो पढ़ी थी हमने बचपन में। तो ऐसे जैसे करने गए तो कृष्ण यहाँ से जैसे निकल गए, तभी सूरदास ने कहा कि ये कोई बड़ी बात नहीं है कृष्ण, जो तू निकला श्याम, तू यहाँ से निकल सकता है मेरी बाहों से, मेरी निगाहें तो है नहीं, मेरी बाहों से निकल सकता है, परंतु तू अगर इतना शक्तिवान है तो मेरे दिल से निकल करके दिखाओ। तभी हंसते हंसते जैसे गायब हो गए कृष्ण। माना ऐसे ऐसे भक्त आत्मा में भी निश्चय में जो अटल रहे, अचल रहे, एक ही बल, एक भरोसे पे रहे हैं। तो वो हमने पढ़ा था कि जो इनके हवाले रहते हैं उनका तो बेड़ा पार होता है, यहाँ तो स्वयं प्रभु पधारे हैं और अभी ब्रह्मा के तन में। कितनी बार अभी मुरली में तो बाबा बताते हैं कि ब्रह्मा के द्वारा मैं सब कुछ आपको प्राप्तियां कराता हूँ। तो बहुत कुछ प्राप्तियां करवाई बाबा ने, देखो पहले ही फाउंडेशन डाला प्योरिटी का, तो वादा ही किया कि बस आई हम भगवान के तो हमको करना ही क्या है। और जब पहली बार ब्रह्मा बाबा मिले तो हम भी उस टाइम पे अचानक ही हमारी रस्सी खींच गई, साक्षात्कार हुआ, माना दिव्य दृष्टि के द्वारा बाबा को देखा। तो बस बाबा को देखा तो मैं एकदम बाबा को वतन में ही भागी पहन ली, और भागी पहन करके मैं इतनी जोर जैसे आंसू बहाने लगी कि बस प्रभु, मेरी एक ही आस थी आपसे मिलने की, आप मिल गए, अभी मैं यहाँ से जाने वाली नहीं हूँ, कुछ भी हो जाए बस मेरा जीवन सफल हो गया, धन्य हो गया, अभी मुझे दुनिया में कुछ भी नहीं चाहिए, बस आप मिले मुझे सब कुछ मिल गया। तो उस टाइम पर भी श्री बाबा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा तुरंत ही आकर के मेरे जैसे मस्तक पर वरदानी हाथ घुमा रहे हैं और कहने लगे कि बच्ची मैं इसलिए तेरे को नहीं मिला हूँ कि तू मेरे पास आके बैठ जा, लेकिन मैं मिला हूँ इसलिए कि अभी वर्तमान समय ये जो कलयुग का काल चल रहा है उसे मुझे बदल करके नया बनाने का, नया विश्व बनाना है। और इस नए विश्व के अंदर आप भी इस कार्य के अंदर एक शक्ति स्वरूप बन करके आपको पार्ट प्ले करना है। आप यही सोचो कि मेरा जन्म इसके लिए ही है और आपको वापस नीचे जाना पड़ेगा। जब ये ऐसा कहा तो वापस मुझे थोड़ा ये हुआ कि मुझे वापस आप नीचे भेज रहे मृत्यु लोक में, तो कहा कि वो तो जाना पड़ेगा पार्ट प्ले करने के लिए, परंतु बच्ची आपका जीवन जन्म मेरे कार्य के लिए। तो कहने का भाव कि देखो भगवान हम बच्चों को कितना न गहरा एहसास करवाता है। तो उसके बाद तो जो प्राप्तियां हुई मम्मा के द्वारा बाबा के द्वारा अभी तक भी याद आता है। मम्मा भी पहली बार मिली तो मम्मा ने कहा कि गोदारी तू समझती हो कि स्वर्गीय दुनिया आने वाली है और उस दुनिया के अंदर तो नोट कर मेरा शब्द। मैंने डायरी पेन लिया, मम्मा ने नोट करवाया कि तू नोट कर के अचल अटल अखंड निर्विघ्न दैवी स्वराज्य प्राप्त करना मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये तेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, भगवान तेरे को मिला। और जगद ये मम्मा का भी स्वरूप देखो तो साक्षात जगदम्बा स्वरूप, तो इतना जैसे कि अद्भुत ये ब्रह्मा बाबा को और मम्मा को वो स्वरूप में देख करके हमारी जिंदगी बहुत ही बदल गई। और बचपन में यूं भी संस्कारी तो घर था और जीवन में भी संस्कारी सभ्यता भारतीय संस्कृति के संस्कार तो थे ही, लेकिन उसको ओपन कैसे करना, उसको लाइफ में कैसे चलाने का वो नॉलेज नहीं थी। तो वो नॉलेज सभी हमको बाबा के घर में आने के बाद वो शक्ति मिली, वो ज्ञान को हजम करने की शक्ति मिली। आजकल हम देखते हैं ना, लोग तो बहुत आते हैं केंद्रों में, बहुत लोग आते हैं, लेकिन उनको एक आत्मा का ही लेसन पहला देते हैं तो आत्मा के लेसन में ही वो, क्योंकि वो बहुत ही दैहिक भाव में चलते हैं, बहुत ही बहिर्मुखी होते हैं और बहुत ही देह अभिमान में रहते हैं। जब पहले दिन का लेसन आत्मा हूँ मैं, ये पक्का करो आत्मा हूँ मैं, शरीर नहीं हूँ, तो कहेंगे बस 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 बहन जी अभी इतना मुझे ज्ञान डाइजेस्ट नहीं होगा। तभी समझ जाते हैं कि इनका पार्ट कुछ आगे पीछे होगा स्वर्गीय दुनिया में या त्रेता में गए। आते तो बहुत लोग हैं, लेकिन देखा गया है कि जिसका पार्ट हाईएस्ट है, हाई क्वालिटी का है, उनको बाबा का इशारा काफ़ी है, उनको ज़्यादा कुछ बोलना नहीं पड़ता है। बाबा इसलिए कई बार अव्यक्त वाणी में भी कहा है कि हो सकता है कि अभी भी बहुत सारी आत्माएं ऐसी रही हुई है कि जिसको अभी तक संदेश नहीं मिला है, और हो सकता है कि वो लास्ट आने वाली आत्माएं भी फास्ट जाए और फास्ट में भी फर्स्ट आ सकती है। तो ये भी प्रैक्टिकल अनुभव कर रहे हैं कि अभी भी जो समझो कि बहुत समय से चल रहे हैं। मुझे याद आता है बाबा का एक शब्द कि बाबा के सामने कोई एक बाबा का बच्चा आया, कहा कि बाबा देखो मुझे 15-20 साल हो गए ज्ञान में चलते, लेकिन अभी तक भी मेरे मन का समाधान नहीं हो रहा है, मेरा मन इतना याद की यात्रा में नहीं लग रहा है, या योग में बैठता हूँ मन भटकता है। बाबा इतने अच्छे, बाबा की मुस्कुराहट थी, बाबा बहुत ही शांत स्थिर धीर्यवत और गंभीर। बाबा जो वो सुनाता था सुनते गए सुनते गए, अच्छा 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 ठीक। बाप याद आए ना, ड्रामा याद आए ना, इतना साइलेंस बोल करके बाबा आगे बढ़ गए। कहने का भाव कि बाबा हर एक बच्चों की जन्म पत्री को जानता था। बाबा के सामने कोई भी बच्चा जाता था उसकी जन्म पत्री को जान लेता था बाबा। हम ही पहली बार जाकर के खड़ी रही तो तुरंत ही बाबा ने दादी को कहा कि देखो ये बच्ची मेरी 5000 साल की पुरानी आत्मा है। इस आत्मा को मैं ढूंढ रहा था, ये आत्मा मुझे ढूंढ रही थी। अभी इनका मिलन हो गया, आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन हो गया है। तो अभी ये बच्ची हकदार है, अधिकारी है। तो कहने का भाव कि देखो भगवान अपनी ज्योति जब जागृत करता है अंदर आत्मा की, तो भाग्य विधाता, इसलिए बाबा को कहा जाता है कि वो दाता भी है, वरदाता भी है, भाग्य विधाता भी है। तो वो भाग्य को इस दुनिया का नकली भाग्य नहीं, इस दुनिया के भाग्य में क्या समझते हैं, कई लोग आते हैं अपने पास भी तो समझते, मैं तो बहुत खुश हूँ दीदी, मैं तो बहुत खुश हूँ, मुझे भगवान ने 2-3 गाड़ियाँ भी दिया है, बड़ा महल जैसा एक बंगला भी दिया है, बच्चे भी मेरे कहने पर चल रहे हैं, सभी हम बहुत खुश हैं। आप कहते हो स्वर्ग में चलना है चलना है, मेरा तो स्वर्ग यहाँ ही है। तभी हमको भी हंसी आती है कि ये जो स्वर्ग है वो तो कलयुग का स्वर्ग है, अल्पकाल का स्वर्ग है। सही स्वर्ग को जिन्होंने देखा उनके तो ये अल्पकाल के स्वर्ग में दृष्टिवृत्ति जाएगी भी नहीं और उनका मन भी इसमें नहीं लगेगा। तो ये स्वर्ग तो कॉमन स्वर्ग है, ये स्वर्ग तो कभी भी कैसे भी करके उलट पुलट हो सकता है कभी भी, परंतु फिर भी हम तो बस जैसे बाबा मुस्कुराते थे, हम लोगों के भी वही संस्कार हो गए। कोई भी बात कहीं के भी कुछ भी सुनी, बाबा कहते सुनी अनसुनी कर दो, देखा हुआ देखते हुए भी नहीं देखो। तो कहने का भाव कि अभी आंखें जो दिखाई पड़ेगी चीज वो तो देखेंगे, कान का काम है सुनने का सुनेंगे, लेकिन जो जरूरी है उतना ही सुनते हैं, जो आवश्यक है उतना ही देखते हैं, बाकी जो हमारी आवश्यक चीज नहीं है उनके पीछे हम क्यों पड़े, क्या जरूरत है। देखो वही माता ऐसे हमको बोल के गई, हम तो एकदम शांत रहे, चुप रहे, कुछ नहीं बोला। हम भी एकदम ही बाबा को याद करके, बाबा की याद में मैं कहा ठीक है, खुश है ना, जो जिस जगह पर, हमारा तो सभी को सभी के प्रति शुभ भावना है, सभी खुश रहे। लेकिन कुछ दिनों के बाद ही वो माता अचानक आई रोती रोती, तो मुझे आश्चर्य लगा कि अरे माता जी आप तो पहले भी आए थे, आज क्यों मुंह आपका इतना पीला पीला हो गया है। तो कहती है कि पता नहीं, देखो ना मेरी लाइफ में मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था। हम बड़े धीरेता से उनकी बात सुनने लगी, तो कहा कि बड़े शौक से, बड़ी खुशी से, बड़े उमंग उत्साह से मेरे एक बड़े बेटे की मैंने शादी करवाई, क्या मुझे खुशी नहीं होगी। और बड़े बेटे की जो बहू आई है वो ऐसी आई है जो वो मुझे ही बाहर निकाल रही है। तो मैंने कहा कि आप तो स्वर्ग में बैठे हो ना, आपको क्या तकलीफ है। तब भी उनको ख्याल है कि मैंने स्वर्ग बोला था, तो क्या मेरा स्वर्ग मेरी बहू आने के बाद सारा नरक बना दिया मेरे घर को सारा ही, अभी स्वर्ग कहेगा। तो जब उसको शादी करने की थी ना, तब भी मेरे बेटा को बोला मुझे मिलने का है उनसे, तो मिली। तभी ही बेटे को बोला था कि मैं आपके घर में आना तो चाहती हूँ, परंतु, बोले परंतु क्या, परंतु आपके घर में, देखो क्या भाषा होती है आजकल की, आपको भी मालूम होगा, अनुभवी बैठे हैं सभी यहाँ तो मालूम होगा। तो कहा कि आपके घर में डस्टबिन कितने हैं, समझ में आई बात, समझ में आई कि नहीं। डस्टबिन कितने, मैडम बड़े लोग कितने आपके घर में। तो आजकल किसी को बड़े कोई चाहिए नहीं, ये अज्ञानता कितनी है, अंधकार कितना है। तो घर में आने से ही उसने क्या किया, पति को पहले ही बोल दिया कि देखो तेरे नाम का क्या क्या है इधर ये बताओ। बोले मेरे नाम का कुछ नहीं है, मेरे डैडी के नाम का, क्योंकि उसने बेचारे ने मेहनत किया है, घर लिया, बंगला लिया, सभी उसने ही बनाया। मेरी माँ उनको बड़ा प्यार से संभाल रही है, मेरे लिए तो मेरे माँ बाप ही सब कुछ है। तो कहा कि ठीक है फिर मैं जाती हूँ पियर घर। तो कहता नहीं नहीं ऐसे नहीं कर, ऐसे नहीं कर, थोड़ा तू रुक तो सही, रह तो सही, एक दफे हमारा नाम बदनाम हो जाएगा बाहर परिवार में समाज में। वो जबरदस्ती रोका, फिर रोका तो फिर बाद में यही बस वो बात घड़ी घड़ी निकल गई है, जो जितनी प्रॉपर्टी है ना पहले तू तेरे नाम की करवाएगा, पार्टनरशिप में मेरा भी नाम हो, उसके बाद में आऊंगी। मैंने कहने का वो कि आज कलयुग की दुनिया अभी कहाँ की कहाँ चल रही है, क्या क्या सोच रही है, क्या क्या हो रहा है। और यह प्रभु का कार्य देखो, विश्व नव निर्माण का कैसा चल रहा है, कितना स्मूथ चल रहा है, कितना अच्छा चल रहा है। तो दादियों ने, बाबा ने हम बच्चों को ज्ञान देकर के, समझ देकर के, सबसे पहले तो अपने दिल के अंदर इतनी ज्ञान का अमृत भरा जो मुख से मुस्कुराना सिखा दिया, और दुनिया वालों ने मुरझाना सिखाया और बाबा ने मुस्कुराना सिखाया। अभी कोई कितना भी करे हम लोग मुरझा नहीं सकते, तो भी उन लोगों को गुस्सा आता है। परिवार वालों को पहले हमारे ऊपर ही गुस्सा आता था कि तू कौन हो, पत्थरों के कौन हो, हम कितने भी दुखी होते हैं, ये होता है, तेरे को कुछ भी नहीं होता है, तू जब भी देखो तो बस बाबा याद है, स्वर्ग याद है, वर्षा याद है, ये याद है, मनमना भाव याद है, मध्या जी को याद है, तो वही बोलती रहती हो रही। हम तो अंदर ही अंदर में खप जाते हैं सारे, चिंता टेंशन टेंशन में हमारा जी एकदम ही खत्म होता जा रहा है। तभी मुझे लगता है कि क्यों खत्म कर रहे हो। मुझे बाबा की बातें याद आती है कि अव्यक्त बाप दादा ने कहा था, एक किसने कहा कि आप बाबा टेंशन बहुत है, तो बाबा बड़े मधुरता से उनको जवाब देते, अव्यक्त बाबा मुस्कुराते हुए कहते हैं कि क्या बोला बच्चे ने, बाबा टेंशन बहुत है। अच्छा बाबा ने कहा आप एक काम करो, टेंशन के आगे ए लगा दो तो क्या हो जाएगा, ए लगाएंगे तो क्या होगा, अटेंशन। तो बाबा देखो कहाँ बच्चों को ले जा रहा है, आप अटेंशन दो, टेंशन क्यों रखते हो, दिमाग खोटा क्यों खपाते हो। तो इसलिए बाबा की शिक्षाएं तो अनगिनत मिली है जीवन में, लेकिन जीवन के अंदर उसको धारण करना, तो बाबा कहते हैं कि वो भी कोई मासी का घर तो नहीं है, परंतु 5000 साल वर्ष पहले के जो भी बाबा की आत्माएं हैं निकली हुई वो तो निकलेगी। तो ये सभी अंदर ही अंदर, पहले तो ये भी पता नहीं था कि माया किसको कहा जाता है, लोग भी समझते थे, हम लोगों को भी पता नहीं था, माया माना बस ये धन संपत्ति पुत्र परिवार घर बार बस वही सब कुछ माया है। बाबा का बनने के बाद पता चला कि माया तो 5 विकार है। तो ये 5 विकार जो है ना मनुष्य आत्माओं को बहुत ही दुखी अशांत करता रहता है। तो बाबा ने हम बच्चों को कितना अच्छे अच्छे ज्ञान अमृत के, ज्ञान के रोज की मुरली क्या है, 4 पेज का बड़ा डोज दे रहे हैं सवेरे सवेरे बाबा। अगर वो डोज हमने सवेरे पी लिया, ग्रीन शरबत जिसको कहते हैं, अगर ग्रीन शरबत सवेरे पी लिया फिर आप नाश्ता करो कि नहीं करो, लेकिन आपको अंदर में ताकत बनी रहेगी। और साकर बाबा भी बता देते कि सवेरे सवेरे मुरली ध्यान से सुनी माना तरावटी माल खाया आपने, खुशबूदार माल खाया, जैसे कोई अच्छी चीज़ नहीं एकदम पेट भर के खा लेते हैं ना, तो पेट भरा रहता है, फिर इनको कुछ भी दो क्योंकि आज हमको खाना नहीं खाने का, हमारा पेट भरा है। सवेरे इतना अच्छा तरावटी माल खाया है ना, फर्स्ट क्लास पिस्ता बादाम काजू सच्चा घी, तभी हमको भूख नहीं लगी है। तो ये बाबा की जो मुरली है ना, वो तरावटी माल है सवेरे सवेरे। तो अगर हम उनको दिल से सुनती हैं, जिगर से उसको पकड़ते हैं और मन में वो वर्सेंस उसके याद रखते हैं, तो योग में बैठते हैं भले, लेकिन योग आप ही लगता है। अभी तक भी बाबा कहते, कई बच्चों की कंप्लेंट आती है कि बाबा हमारा योग नहीं लगता है, बाबा कहते मुझे हंसी आती है। योग शब्द ही निकाल दो, याद शब्द रखो। योग शब्द कहने से बहुत बड़ा भारी शब्द हो जाता है। योग माना योगी लोग ही योग लगा सकते हैं, परंतु योग नहीं, पर यही कहो कि बाबा मैं याद कैसे करूं। तो बाबा कहते, अरे जानवर को भी इतना अक्ल होता है, मालूम होता है कि मैं किसके संतान हूं। वो अपने घर में जाके माँ के पास खड़ा रह जाएगा बच्चा उसका। तो हम तो मानव आत्माएं हैं, हमको बाबा ने क्या नहीं दिया है। तो याद आता है कि देखो बाबा ने हम बच्चों को ज्ञान से भी इतना ही भंडार भरपूर किया, साथ में मानव समर्थ संकल्पों का भी इतना ही भंडार भरपूर किया, शक्तियां भी इतनी दिया बाबा ने। अष्ट शक्तियां तो सिर्फ नाम की है, लेकिन सर्व शक्तियां दिया, सर्व गुणों में संपन्न बनाने के लिए बाबा ने हम बच्चों को समय प्रति समय कोई भी अभी की एक वाणी में चला कि कोई भी आपके ऊपर अगर अपकार करता है तो आप उसके ऊपर उपकार करो। अब तंग नहीं हो जाओ कोई भी बात के लिए, जितना तंग होंगे ना उतना ही माया आपको तंग ज्यादा करेगी। पर अगर प्रभु के संग में रहेंगे तो उसका रंग लगता रहेगा। तो अभी वो समय चल रहा है, आपका ये भी समय हो चुका है, घड़ी टाइम दे रही है, अभी वो समय चल रहा है कि हमें और किसी को भी न देख करके एक बाबा ब्रह्मा बाबा को फॉलो करके आगे बढ़ने का तीव्र पुरुषार्थ करना है। अभी पुरुषार्थ में भी यही कि बाबा समान संपन्न और समान बनने की रात दिन मेहनत करनी है। मेहनत भी क्या है, बाबा ने खजाना जो दिया है उसका खुद भी उघाड़ते रहो गाय की तरह, और फिर औरों को भी खिलाते रहो, यही खजाना देते रहो। इसलिए अव्यक्त बाबा ने देखो लास्ट वाणी में क्या कहा 2018 में, कि बस आप भी खुश रहो, 2017 में बोला था, आप भी खुश रहो, खुशियां बांटो। अभी ब्राह्मणों के लिए लास्ट यही समय है, खुश रहना, खुशियां बांटना। माया भी आएगी, पेपर लेगी, नहीं तो कैसे मालूम पड़ेगा कि आप पास हो के फेल हो। कई कईयों को, कई आत्माएं अभी भी ऐसी है कि हमको कोई ऐसा मतलब ही नहीं है, हमारे भले इस गॉडली यूनिवर्सिटी के चार ही सब्जेक्ट है, चार सब्जेक्ट में हमको फुल मार्क्स लेने का अंदर में उत्कंठा होनी चाहिए। कई कई कहेंगे बहन जी हमको कोई चिंता नहीं, पासिंग मार्क्स मिलेगा ना 33-35 तो भी चलेगा, भले त्रेता के अंत में आएंगे चलेगा। तभी हम समझ जाते हैं कि उनका पार्ट ही ऐसा होगा कि उसके मुख से शब्द ही ऐसा निकलता है। परंतु हम लोग क्या है कि करें तो पूरा पुरुषार्थ ही करें, कम क्यों करें। जब हमको स्वर्ग में जाना ही है तो पूरा ही 8 जन्म 12 जन्म 1 जन्म यहाँ का भी 21 जन्म की पूरी बात सही क्यों नहीं लेवे, जबकि हमको मालूम है कि नीचे उतरना ही है। और शास्त्रों में भी है कि देवताओं का जब भी पुण्य थोड़ा कम होने लगता है तो लिखा है एक छोटी सी स्लोगन है संस्कृत का कि क्षीणे पुण्य मृत्यु लोके, जब पुण्य क्षीण होता है कम होता है तभी उसको मृत्यु लोक में आना पड़ता है। तभी होवनहार देवताएं फिलहाल सभी मृत्यु लोक में ही है, मृत्यु लोक में बैठ करके ही अमर लोक में जाने की तैयारियां कर रहे हैं। तो उनमें से हर एक बाबा के बच्चों को समझना चाहिए कि होनहार देवी देवताएं हम ही हैं और कोई नहीं है, हमें ही हमारी चाल चलन चेहरा, बाबा ने यही आस रखी है बच्चों में कि आप बच्चों के द्वारा ही मैं प्रत्यक्ष होने वाला हूँ। तो हमारे चेहरे की लालिमा कभी कम होनी नहीं चाहिए, चेहरे की मुस्कुराहट जानी नहीं चाहिए, चेहरे में कभी उदासीनता आनी नहीं चाहिए, कोई बुलावे तो गुस्सा आना नहीं चाहिए, लोभ मोह असुद अहंकार यलबेलापन आलस्य काम विकार सभी क्या है। अरे इतने सालों के साल हो गए, बाबा कहते छोटी से मैं आपसे कुछ नहीं मांगा, इन खाली प्यूरिटी को ही मांगा, आप मेरे खातिर क्या इस एक जन्म भी नहीं पूरा जन्म जब से बाबा मिला तब से लेकर के क्या इतना समय भी आप प्यूरिटी में रह नहीं सकते हो, पवित्र बन नहीं सकते हो, अपने जीवन को योग युक्त बना नहीं सकते हो। तो ऐसे बाबा की हम जितनी में महिमा करें उतनी कम ही कम है। तो ऐसे बाबा का हमने देखा, जलवा भी देखा, झलक भी देखी, ज्ञान की फलक भी देखी जीवन में। और वो जैसे देखो अपने शरीर के अंदर कहते हैं कि 1999 नसेस है छोटी बड़ी मिला के, उन सभी में ब्लड सर्कुलेशन होता है, अगर वो सर्कुलेशन नहीं हो तो इंसान चल नहीं सके। वैसे ही अपने रग रग में बाबा की याद का भी सर्कुलेशन चलता रहेगा तो वो ब्राह्मण सदा के लिए जिंदा तो रहेगा, माया उसको हाथ नहीं लगा सकती है, और वो ब्राह्मण सच्चा पक्का ब्राह्मण बन के अन्य आत्माओं को भी पक्का बना दी जाएगी। नहीं तो कोई ब्राह्मण जरा भी कहेगा ना कि आप आपका ये ज्ञान तो बड़ा अच्छा है, पर ये अन्न की शुद्धि न संघ की शुद्धि न प्यूरिटी न रॉयल्टी न ये सभी हमको थोड़ा और लग रहा है। तो आप भी सामने अगर पक्के नहीं होंगे मजबूत नहीं होंगे तो क्या कहेंगे, सच्ची बात है हमको भी ऐसा ही लगता है, तो वो क्या आगे बढ़ेगा, कैसे आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए पहले अपना फाउंडेशन पक्का होना चाहिए। मकान में भी देखो जो बिल्डर होते हैं, मकान की मजबूती तभी आती है जब पिलर मजबूत होते हैं उसके, पिलर मजबूत हो तो आज की देखो बॉम्बे जैसे शहर में 100-100 मंजिल के मकान बनाते जा रहे हैं, आप दूर से देखो तो आपको लगेगा कि ताश का महल है कि क्या है, आगे जाके देखेंगे तो आपको लगेगा ये तो कबूतर खाना है, फिर अंदर जाके देखेंगे तो इंसान बैठे हुए हैं अंदर में। तो ऐसे सभी दुनिया आजकल इतनी चारों ओर बढ़ती जा रही है, और ये सभी बाबा के महावाक्य पहले से उच्चारण किए हुए हैं कि कलयुग की सबसे बड़ी निशानी आपको यही दिखाई देगी, शो बहुत बढ़ जाएगा, चमक दमक बहुत बढ़ जाएगी, और अभी क्या है खाली शो ही है, इंसानी अंदर अंदर में खप रहे हैं लेकिन शो बहुत कर रहे हैं, कपड़ा वाले पहनने के लिए इतना अच्छा नहीं होगा लेकिन उधार मांग करके भी जरी वाले ने रेशमी ने कपड़े पहन के बाहर निकलेंगे, घर में एक घड़ी नहीं होगी लेकिन यहाँ सोने की चांदी की ने हीरे की ने घड़ियाँ पहन के बाहर निकलेंगे, सौ बढ़ गया है। तो ये सभी आर्टिफिशियल सौ को छोड़ करके अभी रियलिटी में आ जाएंगे तो जरूर है कि नई दुनिया आने में कोई देर नहीं लगेगी। तो इसलिए सदैव हमारे दिल से मुख से यही निकलना चाहिए कि प्रभु ये जीवन की नैया है हमारी तेरे हवाले, सिर्फ सो नहीं करना है लेकिन जीवन की नैया अगर हम उसको देंगे तो वो संभालेगा, हमने अपने हाथ में ही कंट्रोल करके रखा है, रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में ही रखा है। तो बाबा ये नैया का लंगर अभी कलयुग की दुनिया से उठा ही नहीं है तो स्वर्ग की ओर जाएगी कैसे। तो इसलिए अभी बाबा के कार्य में हमें अभी वही एक सबसे बड़ा सपोर्ट चाहिए, पवित्रता का, योग बल का, साक्षीपन का, साथीपन का, जितना ज्ञान अमृत हम पीते हैं बाबा कहते जहाँ तक जियो वहाँ तक पियो। तो ये सभी बातों का जो बाबा ने हम बच्चों को ज्ञान दिया है वो ज्ञान स्वरूप बन करके जीवन में लाना है, खुद को भी खुश रहना है औरों को भी सदैव खुशियाँ ही खुशियाँ बांटते चलना है। अच्छा, ओम शांति।